मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 24 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस में एडमिशन लिए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं प्रशांत कुमार, आप नवादा बिहार से हैं, और राकेश कुमार, आप बेगूसराय बिहार से हैं। दोस्तों मुख्य विषय के तहत जैसा कि सोमवार को जनरली हम लोग करते हैं प्री एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में ही मैं आपसे बातें करूंगा, और इसके तहत मैं इस टॉपिक पर आज बात करने जा रहा हूं कि किस किस विषय का कितना कितना वजन यानी कि कितना कितना महत्व आपके प्री एग्जामिनेशन में होता है। लेकिन इससे पहले मैं जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं और जो कुछ दूसरी घटनाएं हैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। ऑफलाइन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा संबोधन मेरे लिए है और वह यह कि दोस्तों अब आप देखिए कि धीरे 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 जो कैलेंडर की डेट हैं मिलने की वो कम होती चली जा रही हैं, यानी कि हमारे पक्ष में खिसकती चली जा रही हैं। एक सप्ताह और कम हो गया है, 3 सप्ताह के बाद हम सब मिलने वाले हैं। मैं जो आज आपसे बात कहने जा रहा हूं मित्रों वह यह कि अब आपको चाहिए कि आप अपने दिमाग को धीरे 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 खाली करना शुरू कर दें। देखिए मैंने पिछले सप्ताह आप सबसे बात की थी कि दिमाग से आशंकाएं खत्म कर दें, तनाव और दबाव को खत्म कर दें कि भोपाल जाने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे हम सफर करेंगे। मुझे विश्वास है कि एक सप्ताह की कोशिश के बाद आपको इन दबाव और तनाव से मुक्ति मिल गई होगी, और अगर नहीं मिली है तो आपको चाहिए कि आप इससे अपने आप को मुक्त कर लें क्योंकि वो निहायत ही जरूरी है। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि आप अपने दिमाग को खाली करें। जब मैं कह रहा हूं कि खाली करें तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप यहां लेने आ रहे हैं और जो लेकर आपको जाना है वो अपने दिमाग में लेकर के जाना है, और तो कोई दूसरी चीज है नहीं। आप अपने बैग में यहां से कुछ नहीं ले जा सकेंगे, अपने हाथ में भी यहां से कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे। जो कुछ भी आप ले जाएंगे वह अपने दिमाग में ही रख कर ले जाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता, अगर हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सोचें, कि यदि आपको दिमाग में ही रख कर ले जाना है तो अपने दिमाग में स्पेस तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप हम सबका दिमाग बेसिकली हर समय भरा हुआ रहता है। तो जो दिमाग अगर भरा हुआ है तो आप बताइए कि उसमें नई चीज कैसे डाल सकेंगे। आपको अपने दिमाग में स्पेस बनाना है, और यहां मैं जिस स्पेस की बात कह रहा हूं वो केवल यह है, अब आप ये जरा सोचना शुरू कर दीजिए कि मुझे सीखने जाना है, और यह सीखने जाना है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की पढ़ाई की कैसे जानी चाहिए। इसके दूसरे भी बहुत से अंग होंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे, आप इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ेंगे, आप निबंध कैसे लिखेंगे, आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, अखबार कैसे पढ़ेंगे, रेडियो की न्यूज कैसे सुनेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे। ये जितने भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के हैं इन सब पर हम लोग बातें करेंगे, और बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर बात करेंगे, प्रैक्टिकल लेवल पर बात करेंगे। तो अगर आपके दिमाग में अभी से यह भरा हुआ होगा कि नहीं मुझे तो पढ़ना आता है, मुझे तो उत्तर लिखना आता है, ठीक है वहां जा रहा हूं शायद कुछ और जानने को मिल जाए, तो मुझे लगता है कि फिर आपका दिमाग भरा हुआ है। आप धीरे 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 ये अपने को कहना शुरू कीजिए, खुद से ही कहना शुरू कीजिए कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस खत्म करना है, आपको बहुत कुछ आता है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स से सफल हुए होंगे, मैं उन सब की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, जिस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि वह डेफिनेटली बहुत से स्टूडेंट को नहीं आता, बहुत थोड़े से स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि कुछ समय के लिए जब तक आप यहां कुछ दिनों की क्लासेस अटेंड नहीं कर लेते तब तक अपने दिमाग को यही इंस्ट्रक्शन देते रहिए कि नहीं मुझे कोई खास नहीं आता, तभी आप यहां की बातों को समझ पाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2-3 दिन की क्लासेस के बाद ही आपको ये समझ में आने लगेगा कि वास्तव में मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ने का तो सही तरीका ये होता है, फिर चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो चाहे आपकी दूसरी परीक्षाएं ही क्यों ना हो। तो दोस्तों अपने दिमाग को धीरे 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 खाली करना शुरू कीजिए, उसमें रिक्त स्थान का निर्माण कीजिए। फ्रेंड्स अब मैं थोड़ी सी महत्वपूर्ण घटनाओं पर आइए एक दो कुछ बातें मैं कर लेता हूं। देखिए, एक अखबारों में छपा है, कुछ ही अखबारों में, नेशनल न्यूज़पेपर्स में आया है, वो है अभियान मां के बारे में। अभियान मां, मदर, ये अभियान मां क्या है? प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं, ये उनके खिलाफ छेड़ा गया यह अभियान है। लेकिन यह अभियान बड़े विचित्र किस्म का है। इसमें मां शब्द है, तो मां शब्द का मतलब क्या हुआ? मतलब इसका अर्थ यह है कि वहां बहुत से स्थानीय आतंकवादी आ गए हैं। मतलब ये घुसपैठियों की बात नहीं हो रही है, मतलब वहां के नौजवानों को बरगला करके, उनके दिमाग में कुछ जहर भर भर करके उन्हें आतंकवादी बना दिया गया है। वो वहीं के लोग, तो उन्हें आप कह सकते हैं कि स्थानीय आतंकवादी हैं, ठीक है। तो इन स्थानीय आतंकवादियों के खिलाफ यह अभियान छेड़ा गया है। तो होता यह है कि जो वहां हमारे नौजवान हैं, जो हमारे सीआरपीएफ के और जो पुलिस के जो अधिकारी और जो हमारे जवान हैं सेना के, तो वे बकायदे, आप यूं कह लीजिए कि इनको पकड़ने का अभियान छेड़ते हैं, फिर मुठभेड़ होती है। तो जब मुठभेड़ होने लगती है, तो देखिए मुठभेड़ में सामान्यतया क्या होता है कि सामने वाले को ढेर कर दिया जाए, अगर पकड़ ले तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ढेर कर दिया जाए, मार गिराया जाए। लेकिन वो जैसे ही जब मुठभेड़ होने लगती है और जब आधी हो जाती है, तो मुठभेड़ को रोक दिया जाता है। इसके बाद ये जो आतंकवादी जो घिरे हुए हैं, स्थानीय आतंकवादी, उनके परिवार के लोगों को, उनके माता पिता को, और खासकर स्थानीय जो लोग हैं, गांव के लोगों को, उनको बुलाया जाता है और फिर उनसे अपील कराई जाती है उसके नाम पर कि भाई आप सरेंडर कर दो। तो फिर अगर वह स्थानीय आतंकवादी इनकी भावनाओं में आ जाता है या उसके अंदर उस तरह की भावनाएं पैदा हो जाती, आ जाता है नहीं कहना चाहिए, उसके अंदर उस तरह की भावनाएं पैदा होती हैं कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मेरे माता पिता मुझे चाह रहे हैं, मेरे गांव के लोग चाह रहे हैं, तो फिर वो सरेंडर कर देता है। इसमें वहां के जो हमारे अधिकारी हैं उनको काफी सफलता मिल रही है। दोस्तों, यह अभियान है मां। अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप साहब हैं, वो भारत आज पहुंच ही गए हैं, तो अब इन पर आपको ढेर सारे लेख पढ़ने को मिलेंगे। उन लेखों के साथ आप न्याय कैसे करेंगे दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे चल करके आपसे बात करूंगा। न्यूज में आपने हमारे राष्ट्रपति जी का एक बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट सुना होगा, और वो ये है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उसने प्रगतिशील समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, आपको चाहिए कि आप इस विषय पर विचार करें, और बेहतर होगा कि इस पर आप सब 500 शब्दों का एक निबंध भी लिख लें। मैं ज्यादा लिखने के लिए जानबूझ के नहीं कह रहा हूं, आप 500 शब्दों का ही लिखें और इस रूप में लिखें कि प्रधानमंत्री, हमारे जो राष्ट्रपति जी ने बात कही है वो सिद्ध हो जाए। मैं वाक्य दोहरा रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय ने प्रगतिशील समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, आज न्यूज़पेपर्स का मैं एक एडिटोरियल कमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड का, वो डेटा को लेकर के है, आंकड़ों को लेकर के है कि किस तरीके से अब जो आंकड़े इकट्ठे करने के लिए जब लोग पब्लिक के पास जा रहे हैं, तो पब्लिक उनका सहयोग नहीं कर रही है, वो घबरा रही है, इनको लेकर के यह आंकड़ा लिखा गया है। मुझे लगता है कि बड़ी नई किस्म की समस्या है। अगर आंकड़े हमारे सही संकलित नहीं हुए तो फिर हमारी नीतियां कैसे बनेंगी, तो एक नई चुनौती आ गई है। तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है, तो बेहतर होगा कि इस टॉपिक को आप अभी से ही संभाल लें। तो इसे आप जरूर पढ़ेंगे, और दूसरे और भी आर्टिकल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख लेंगे। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय में यह है कि जो हमारा प्री एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें जो अलग अलग विषय हैं उनका कितना कितना योगदान है, उनकी कितनी कितनी भूमिका है। फ्रेंड्स, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका प्री हो या मेन्स हो, मैं जनरल स्टडीज की बात कर रहा हूं यहां, उसके मैं 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स मानता हूं, सबसे मजबूत 4 स्तंभ। और इसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो एकदम पहली बार बैठेंगे, शायद उनको ना मालूम हो। तो ये जो 4 पिलर्स हैं, ये आपका भूगोल होता है, इसमें इतिहास होता है, और जब मैं इतिहास की बात कर रहा हूं तो उसमें आप कला साहित्य और संस्कृति को भी शामिल कर लें, क्योंकि कला साहित्य संस्कृति की तैयारी जो है वो इतिहास के साथ ही होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी सी जो लोक कलाएं होती हैं, जैसे लोक चित्रकला है, लोक मंच है, लोक संगीत है, उसके बारे में आप जरूर थोड़ा सा अलग से देख लें, क्योंकि जब आप इतिहास में के माध्यम से कला साहित्य संस्कृति की तैयारी करेंगे तो आपको इनका उल्लेख वहां नहीं मिलेगा। तो भूगोल है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है जिसे आप संविधान के नाम से जानते हैं, और जो आपका अगला विषय है वह है अर्थशास्त्र। ये 4 विषय सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप पिछले 6-7 साल के अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखें, जिसे आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कहते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलेगी, और वो यह है कि कोई भी ईयर ऐसा नहीं रहा है जिस ईयर में इन चारों सब्जेक्ट से न्यूनतम मिनिमम 60% क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हों। मैक्सिमम जो है 74% तक गया है, आप कल्पना करके देखिए 74%। हाँ, ये जरूर है कि जब मैं इन सब विषय के बारे में बात कर रहा हूं तो जो करंट अफेयर से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस होते हैं वे भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं, तो चूंकि वो एक विषय से संबंधित है, भले ही उनका संबंध करंट अफेयर से ही क्यों न हो, तो मुझे लगता है कि उसे विषय से ही जोड़ करके देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी एक अनुच्छेद 371 के बारे में पूछ लिया गया, तो ठीक है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, लेकिन इसी साल क्यों पूछा गया 371 अनुच्छेद के बारे में, तो उसके पीछे रीजन है। तो रीजन यह है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए सरकार, हमारी सरकार ने कहा है कि नहीं, उनको इसके बाद डरने की कोई जरूरत नहीं है, वहां से अनुच्छेद 371 नहीं हटाया जाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने बातें भी की थी। तो अब इस तरह से करंट अफेयर्स का भी हिस्सा बन गया है और आपके कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा है, तो अब आप इसे किसी में भी काउंट कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर हम इसके एवरेज को निकालें तो मैं समझता हूं कि ये लगभग लगभग हमें मानकर चलना चाहिए कि हर साल 65% कंट्रीब्यूशन इन चार विषयों का होता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वह है पर्यावरण, एनवायरमेंट। आप जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 8 से 10 क्वेश्चन, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस एनवायरमेंट से है, और यह बहुत बड़ी संख्या है। इस मायने में यह बहुत प्यारा विषय है कि क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत छोटा सिलेबस। मुझे लगता है कि अगर कोई भी अच्छा इसकी जो समझ रख रहा है अगर आपको लेक्चर दे तो 20 से 25 घंटे में पूरे एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताया जा सकता है। इतना छोटा जिसका सिलेबस हो और अगर वह 10% क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दे, तो आप सोच करके देखिए कि ये कितना फायदे वाला सौदा है, सौदा ही मैं यहां कहूंगा। तो ये जो 5 विषय हैं, ये 5 विषय आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जहां तक साइंस का सवाल है फ्रेंड्स, साइंस को संभाल पाना मुझे बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है। साइंस के अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में आप सब अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। कुल मिलाकर के यह है आपके प्री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जाते हैं, उनमें अलग अलग विषयों की क्या भूमिका है इसके बारे में। जहां तक करंट अफेयर्स का सवाल है, मैं आपको बता चुका हूं कि करंट अफेयर्स से संबंधित जो 4 विषय हैं उससे जुड़ जाते हैं, यहां तक कि पर्यावरण से भी वो विषय जुड़ जाते हैं। हाँ, इंटरनेशनल अफेयर्स पर इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में कुछ नई चीजें होती हैं, वो नई चीजें आप अलग से बिल्कुल सेपरेट करंट अफेयर्स में शामिल करके चल सकते हैं, उनके लिए अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट लगातार न्यूज सुन रहा है, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा है, तो उसके करंट अफेयर्स की जरूरत धीरे धीरे लगातार पूरी होती चली जाती है। हाँ, उसका आपको एक अच्छा सा कलेक्शन जरूर तैयार करते रहना चाहिए ताकि समय समय पर आप उन्हें दोहरा सकें। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के ये कुछ बातें थी आज के मुख्य विषय के बारे में। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं नीतू सेजवाल, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, विनय कुमार, प्रीति सिंह, सैफ अहमद, पुलकित उषा सरकार इलाहाबाद से, अखिल, सूरज कुमार, साई मधुमिता कांडा और अभिलाष शर्मा पंचकुला हरियाणा से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।